हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव और तारा की मेहंदी की रस्म चल रही थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे थे, जिस वजह से उनके बीच नोकझोंक भी हो रही थी। जहां गुस्से में तारा ने अपनी मेहंदी में ध्रुव का नाम ही नहीं लिखवाया, तो वहीं तारा को चिढ़ाने के लिए ध्रुव ने अपनी मेहंदी में मेहर का नाम लिखवाया था। वहीं दूसरी तरफ घर की सिक्योरिटी पहले से ही टाइट थी, इसलिए योग याशी को लेकर थोड़ा बेफिक्र था। याशी भी बीच फंक्शन में अचानक ऊपर चली गई थी और गलती से वो मान्या के कमरे में पहुंच गई थी। मान्या की मानसिक हालत देखकर वो थोड़ा डर गई थी और जल्दी से वहां से जाना चाहती थी। जैसे ही याशी वहां से निकलने को हुई, मान्या ने उसे पकड़ लिया था। उसे देखते ही मान्या प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़कर बोली, तुम मेरी बंधन हो ना? लेकिन नहीं, वो अलग दिखती थी और तुमसे बड़ी थी, तुम मेरी बंधन नहीं हो। बोलते हुए मान्या रोने लगी थी। उसने याशी को भी छोड़ दिया था। पहले याशी को उससे डर लग रहा था, लेकिन स्कूल प्रोजेक्ट के चलते वो एक दो बार मेंटल असाइलम और अनाथ बच्चों के बीच जा चुकी थी। अब मान्या से डर लगने के बजाय उसे उस पर दया आने लगी। आंटी आप कौन हो और मैं किसी बंधन को नहीं जानती, अगर वो इस इवेंट में आई है तो आप बता दो, मैं उसे आपके पास भेज दूंगी, प्लीज रोना बंद कीजिए, याशी ने मासूमियत से कहा और मान्या के आंसुओं को साफ किया। याशी के बर्ताव में भी कृषा की छवि झलकती थी। वो उसकी तरह नरम दिल थी। अगर याशी की जगह कोई और बच्चा होता तो मान्या के छोड़ने पर तुरंत वहां से भाग जाता, लेकिन याशी अभी भी वहीं पर थी। मान्या ने याशी की तरफ देखा और फिर ना में सिर हिलाकर कहा, वो यहां नहीं है, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है, मेरी बंधन मुझे छोड़कर चली गई। जब भी बंधन का जिक्र होता मान्या जोर जोर से रोने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे आज भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि उसकी बेटी की जान उसके हाथों से गई थी। बंधन के गम में मान्या की मानसिक हालत ऐसी हो गई थी कि युग चाहता तो मान्या ने जो भी किया उसके बदले उसकी जान ले सकता था, लेकिन उसने मान्या के लिए मौत के बजाय जिंदगी की सजा चुनी और वो सजा सच में काफी दर्दनाक थी। मान्या के लिए बंधन की याद में एक एक पल बिताना काफी मुश्किल था। याशी भी गहरी सांस ली और कहा, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी अच्छी जगह पर होगी, वो आपको ऊपर से रोते हुए देखेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या मुझे रोते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा? मान्या ने हैरानी से कहा और फिर जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करने लगी। वो बोली, तब मैं कभी नहीं रोऊंगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी बंधन को बुरा लगे। ठीक है, फिर हमेशा स्माइल कीजिए, टाइम पर अपनी मेडिसिन लीजिए और खुद का ध्यान रखिए, फिर आप ठीक हो जाएंगी, याशी ने अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर मान्या ने हाँ में सिर हिला दिया था। मैं वही करूंगी जो मेरी बंधन को अच्छा लगेगा, हमेशा स्माइल करूंगी, खुश रहूंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाल बनाऊंगी। फिर तुम मेरी बंधन को बोलना कि वो मेरे पास वापस आ जाए, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मान्या खुद में बड़बड़ाए जा रही थी, जबकि याशी उसकी तरफ देख रही थी। याशी आज पहली बार मान्या से मिली थी, किसी ने पहले उन दोनों का परिचय नहीं करवाया था। याशी मान्या को गौर से देख रही थी कि तभी उसी वक्त कमरे में मान्या की केयरगिवर आ गई थी। अरे याशी बेबी, आप यहां क्या कर रही हैं? प्लीज इस रूम में वापस मत आइएगा, यहां आपके लिए आना सेफ नहीं है, मान्या मैडम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, केयरगिवर ने उसे समझाते हुए कहा। वो याशी को जानती थी और ये भी पता था कि राणा फैमिली के लिए याशी कितनी मायने रखती थी। जैसे ही केयरगिवर की बात खत्म हुई, मान्या ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, तुम मेरी नई फ्रेंड के सामने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम ऐसा बोलोगी तो ये वापस मेरे पास नहीं आएगी। मान्या उसे मारे जा रही थी, तभी याशी ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहा, प्रतिभा आंटी के कहने का वो मतलब नहीं था, आप शांत हो जाइए और मैं आपसे वापस मिलने जरूर आऊंगी। याशी के समझाते ही मान्या चुप हो गई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, प्रॉमिस करो। याशी ने अपना हाथ मान्या के हाथ पर रखकर कहा, ओके प्रॉमिस, लेकिन आप भी गुड गर्ल बनकर रहोगी और आगे से किसी को नहीं मारोगी, अच्छे कपड़े पहनोगी और अच्छे से तैयार होकर रहोगी। मान्या ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। याशी ने फिर प्रतिभा की तरफ रुक करके कहा, आप इनकी केयरगिवर हैं प्रतिभा आंटी, लेकिन फिर भी इनकी क्या हालत हो रखी है? ऐसा लगता है कि ये काफी टाइम से नहाई भी नहीं है और ना ही इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं। बेबी आप अभी यहां पर नहीं हैं और ना ही इनके बारे में जानती हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और साथ ही क्लीनिंग और बाकी चीजों के लिए ये अपने पास भी किसी को नहीं आने देती हैं, ठीक से दवाइयां तक नहीं लेती, तभी इनका ये हाल है। मैं आपसे यही कहूंगी कि इससे पहले कि कोई आपको यहां देखे, प्लीज यहां से चली जाइए, प्रतिभा ने याशी को प्यार से समझाया। अब से ये जिद नहीं करेंगी, मैं यहां वापस आऊंगी तो प्लीज आप इन्हें अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, याशी ने जवाब दिया और फिर उसने मान्या की तरफ देखकर कहा, फिलहाल के लिए मुझे यहां से जाना पड़ेगा, लेकिन आप भी प्रतिभा आंटी के साथ अच्छा बिहेव करेंगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी बंधन आपसे नाराज हो जाएगी और मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं आपसे गुड गर्ल बनकर रहूंगी, मान्या ने बच्चों जैसी आवाज में कहा। मान्या को बाय बोलकर याशी वहां से बाहर चली गई थी। वहीं याशी के समझाने पर इतने सालों में मान्या पहली बार अच्छे से प्रतिभा के साथ पेश आ रही थी और उसे खुद के करीब आने दे रही थी। याशी के साथ एक छोटी सी मुलाकात के बाद मान्या में पॉजिटिव बदलाव आ रहे थे। वहीं याशी कमरे से बाहर पहुंची तो उसके दिमाग में मान्या को लेकर काफी सारे सवाल थे। आखिर वे आंटी कौन है और हमारे घर में क्यों रह रही हैं? प्रतिभा आंटी ने ये क्यों कहा कि घर में किसी को इनसे फर्क नहीं पड़ता और ये बंधन कौन है? प्रतिभा आंटी ने कहा कि मेरा यहां आना किसी को पसंद नहीं आएगा, तो डैड से पूछा तो वे डांट लगाएंगे, ऐसे में मॉम ही हेल्प कर सकती हैं, याशी ने मन ही मन कहा। उसके दिल में मान्या को लेकर काफी उत्सुकता जाग गई थी। खुद से बातें करते हुए याशी बाहर गार्डन एरिया में आ गई जहां ध्रुव और तारा की मेहंदी की रस्म चल रही थी। जैसे ही याशी वहां पहुंची, अलीसा उसके पास आई। उसने याशी का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मेहंदी नहीं लगवानी लिटिल प्रिंसेस, और इतनी देर से तुम कहां गायब हो? कहीं नहीं, मैं ऊपर फ्रेश होने के लिए गई थी, चलो ना मेहंदी लगवाते हैं दीदी, याशी ने टालते हुए कहा। ज्यादातर घर की लेडीज हाथों में मेहंदी लगवाने में बिजी थी। मौलिक ने पहले मेहंदी की रस्म को अटेंड नहीं किया था, वो तारा के निकलने के इंतजाम कर रहा था। जैसे ही मौलिक ने सारे अरेंजमेंट कर दिए तब वो तारा के पास पहुंचा। उन्हें देखते ही तारा की नजरें उन पर चली गईं। मौलिक ने तारा को देखकर पलके झपका दी थी, ये इस बात का इशारा था कि सारे इंतजाम हो गए हैं। तारा ने भी धीरे से सिर हिला दिया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। मौलिक से बात करने के चक्कर में तारा एक पल के लिए भूल गई थी कि वो ध्रुव के पास बैठी हुई है। ध्रुव ने उसकी इस हरकत को नोटिस किया और सिर हिलाकर तंज भरे लहजे में कहा, क्या बात है, कल तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी और आज आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं। पहले ही बता दो, दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं तो उन्हें यहीं पर रोक दो। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें शादी से भाग भी जाओ, लेकिन सारे अरेंजमेंट डैड ने किए हैं, उनका काम बिगाड़ना सीधे सीधे उनसे पंगा लेने जैसा है।
मैं जो भी करूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर मैं शादी से भाग गई तो तुम्हारा ही फायदा है, तारा ने बेरुखी से जवाब दिया। बिल्कुल मेरा ही फायदा है, पर अगर कुछ करने का सोचा भी है तो हर बार की तरह पकड़ी मत जाना, बार बार तुम्हारी गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाएगा, और प्लीज कुछ अच्छा प्लान बनाना, ध्रुव तारा को रोकने के बजाय उसे उकसा रहा था। तारा ने उसे देखकर मुंह बनाया, उसकी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी तो उसे भूख लगी थी। देखा जाए तो ध्रुव के हाथ पर सिर्फ शगुन की मेहंदी लगी हुई थी और वहां मौजूद सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को खाना खिला रहे थे। तारा को इधर उधर देखते हुए पाकर ध्रुव ने कंधे उचकाकर कहा, मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करना, इन सब कपल्स के बीच काफी प्यार है तभी ये अपनी वाइफ को खाना खिला रहे हैं। मैंने तुमसे कुछ कहा? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मेहंदी बिगड़ भी जाए, तारा ने बेपरवाही से जवाब दिया। तारा को कोई और नजर नहीं आया तो उसे एक वेटर दिखा। तारा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मैं कैसे? वेटर हैरानी से बोला। हाँ तुम ही, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें बताती हूँ, वैसे वैसे प्लेट में खाना ले आओ, तारा बोली। हालांकि वो तारा के लिए ये सब करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन तारा के जोर देने पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खाना सर्व हो जाने के बाद तारा वेटर के साथ एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसे अभी भी तारा को अपने हाथ से खिलाने में अजीब महसूस हो रहा था। तारा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और उसकी शादी हो रही है, अब तो खिला सकते हो ना? वेटर ने हाँ में सर हिलाया और तारा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। वहीं ध्रुव दूर से उन्हें देख रहा था। तारा की नज़र ध्रुव पर पड़ी तो उसे लगा कि ध्रुव को उन्हें साथ में देखकर जलन महसूस होगी, लेकिन ध्रुव ने तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ थम्स अप किया। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ध्रुव के कान के पास युग की आवाज आई तो वो चौंक गया। मेरा उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी के हाथ से भी खाना खाए, ध्रुव ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। तुम्हें नहीं पता लेकिन बाकी लोगों को ये नहीं पता है ना कि तुम दोनों की शादी किन हालातों में हो रही है, सबकी नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई हैं। जाओ और जाकर उसे अपने हाथ से खाना खिलाओ, युग ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन डैड, ध्रुव ने मना करना चाहा लेकिन युग ने उसे तारा की टेबल की तरफ इशारा कर दिया था। मजबूरन ध्रुव को जाना ही पड़ा। सच तो ये था कि तारा ने जानबूझकर ऐसी टेबल ढूंढी थी जिस पर जल्दी से किसी की नजर न जाए। ध्रुव ने तारा को देखा था क्योंकि उसकी निगाहें तारा पर ही टिकी हुई थी, वहीं युग भी उनकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। ध्रुव तारा के पास गया तो उसे देखते ही वेटर जल्दी से खड़ा हो गया था। ध्रुव ने उसे जाने का इशारा किया, वो तारा के सामने बैठ गया और खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मत समझ लेना कि मुझे तुम्हें इसके साथ देखकर जलन हो रही है, अगर डैड ने मजबूर नहीं किया होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता।
हाँ तो मुझे कौन सा तुम्हारे आने या ना आने से फर्क पड़ता है? जल्दी खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है। मैं भी तुम्हें वेटर समझकर ही तुम्हारे हाथ से खाना खा रही हूँ, उल्टा वो तुमसे ज्यादा अच्छा था, तारा ने ध्रुव को चिढ़ाते हुए कहा। वे दोनों एक दूसरे को देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे, जबकि सच तो ये था कि जो हालात चल रहे थे उनमें अगर दोनों एक दूसरे का कत्ल भी कर देते तो युग को हैरानी नहीं होती। जहां एक तरफ राणा मेंशन में शादी की खुशियां छाई हुई थीं, तो वहीं मल्होत्रा मेंशन में इस वक्त हंगामा मचा हुआ था। उन्हें ध्रुव और तारा की शादी की खबर मिल चुकी थी, पर साथ ही वे इस बात से हैरत में थे कि जिस तरह की हरकत के बाद उन्हें मार देना चाहिए था, आखिर ध्रुव उससे शादी क्यों कर रहा था। उससे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मौलिक भी इन सब में आराम से शामिल हो रहा था। डैड दाल में जरूर कुछ काला है, मेहर माफिया प्रिंसेस है तो राणा फैमिली कभी भी उसे जाने नहीं देती, मुझे कुछ और ही लग रहा है। ऊपर से शादी को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, ये तो मेरे सोर्सेस के चलते मुझे पता चल गया, वरना शादी के बाद ही सबको भनक पड़ती। ऊपर से मौलिक चाचू भी वहीं पर मौजूद हैं। सोचिए, वे मौलिक चाचा जिन्हें माफिया और राणा फैमिली से नफरत है, वे आखिर ध्रुव और तारा की शादी क्यों करवा रहे हैं? दक्ष सम्राट से बोला, अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो जल्दी पता करो, क्योंकि कल उनकी शादी होने वाली है, उससे पहले पता नहीं लगा पाए तो कोई फायदा नहीं होगा, सम्राट ने जवाब दिया। दक्ष ने उसकी बात पर हामी भरी और कुछ पल सोचते हुए अंदाज में कहा, अब इस मामले में सिर्फ एक इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है। अपनी बात खत्म करके दक्ष वहां से चला गया, उस इंसान के पास जिससे उसे सच का पता चल सकता था। वहीं सम्राट भी अपनी तरफ से सच का पता लगाने में जुट गया। अगर ध्रुव और मेहर की शादी हो रही थी तो बात उतनी भी सीधी नहीं थी जितनी उन्हें देखने में लग रही थी।